आचार्य भगवान और उन्होंने लिखा हुआ जो समय सार जो है उसके हम 19 नंबर की गाथा को देख रहे थे और उस 19 नंबर की गाथा के द्वारा हमने ये देखा है कि जो द्रव्य है उस द्रव्य में ही उसके गुण मिलते हैं और जो गुण है उसी में वह द्रव्य मिलता है। ख्याल में है? अब उन्होंने वहां घड़ा का उदाहरण दिया था तो कहते स्पर्शादि में पुद्गल है और पुद्गल में ही स्पर्शादि है। अब ये तो बात बिल्कुल सही है। अब उसके अनुसार ये जो अप्रतिबुद्ध यानी मिथ्या दृष्टि या अज्ञानी जीव है वो क्या मानता है कि ये जो कर्म नो कर्म यह तो जुदा द्रव्य उसमें मैं हूं या ये मेरे हैं, दो भिन्न द्रव्य हैं। एक कर्मनो कर्म रूप जो पुद्गल द्रव्य है और दूसरा आत्मा जो है। वहां तो क्या बात थी कि एक ही द्रव्य पुद्गल द्रव्य के स्पर्श रस गंध वर्ण पोड़ाई वगैरह वगैरह जो कुछ था तड़िया वगैरह वो उसमें पाए जाते हैं और जिसमें ये पाया जाता वह पुद्गल द्रव्य है। यानी वहां एक ही द्रव्य में द्रव्य और गुण की बात ली थी। यहाँ दो भिन्न द्रव्य है और इन दो भिन्न द्रव्यों में यह जीव एकत्व बुद्धि करता है, इसलिए यहाँ समझा रहे कि जब तक वह ऐसी गलती करता है, ऐसी भ्रमणा करता है, ऐसी कल्पना करता है कि ये कर्म और नो कर्म, यानी यहाँ जो तीनों ही बातें बताई है भाव कर्म को भी इसमें लिया है, यानी जो द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है और नो कर्म है, इन रूप मैं हूं और ये मेरे में है या ये मेरे है, ऐसी बुद्धि ऐसी मान्यता जब तक यह जीव रखता है तब तक वह अप्रतिबुद्ध है, यानी वह मिथ्या दृष्टि है। उसे ऐसी अवस्था में अपने स्वभाव का सही स्वरूप न समझ में आने के कारण वह अनादि काल से इस भव भ्रमण में फंसा हुआ है और वह कभी स्याना होगा कि ये दोनों भिन्न है ऐसा जब जानेगा और अपना जैसा चैतन्य स्वभाव है उस रूप में हूं ऐसा जब मानेगा तब उसकी अप्रतिबुद्धता नष्ट होकर वो प्रतिबुद्ध यानी स्याना होएगा, सम्यक ज्ञानी होगा। देखो अभी ये भावार्थ में अभी वही बात हमको समझाएंगे। ये तो हमने पूरे गाथा का सार आपके सामने रखा। फिर उन्होंने ये भी बताया था कि वो दर्पण की बात, लेकिन वो बात आगे आएगी। अब क्या कहते देखो, जेम स्पर्शादिमा पुद्गलनो अने पुद्गलमा स्पर्शादिनो अनुभव थाय छे। अभी हम ऐसा लेते हैं, જેમ સ્પર્શાદિમાં પૂતગલનો અનુભવ થાય છે અને પૂતગલમાં સ્પર્શાદિનો અનુભવ થાય છે, યહાં પૂતગલ દ્રવ્ય લિયા ઓર સ્પર્શાદિ ઉસકે ગુણ લિયે, ઇન દોનો કા અવિનાભાવ સંબંધ હૈ. ના ના ના, નિત્ય તાદાત્મ્ય સંબંધ હૈ. વો નિત્ય તાદાત્મ્ય સંબંધ હોને કે કારણ વે દોનો એક હૈ તો દૂસરા હૈ હી હૈ. અબ ક્યા સમજા રહે હૈ? ઉસ જૈસા, યાની ક્યા, જેમ સ્પર્શાદિમાં પૂતગલનો અને પૂતગલમાં સ્પર્શાદિનો અનુભવ થાય છે, અર્થાત બંને એકરૂપ અનુભવાય છે ઘડાની દ્રષ્ટાંતની જેમ, તેમ જ્યાં સુધી આત્માને કર્મ એટલે જડકર્મ અને અંતરંગ રાગાદી ભાવકર્મ અને નો કર્મ એટલે શરીર મન વાણી, એને નો કર્મ કહેવાય, એ નો કર્મ ઇત્યાદિમાં આત્માની અને એ આત્માની અનુભૂતિ કરે છે અને આત્મામાં કર્મ નો કર્મની ભ્રાંતિ કરે છે, ત્યાં સુધી તે અપ્રતિબુદ્ધ છે. ભગવાન આનંદ સ્વરૂપ જ્ઞાયક આત્મા છે, એને આ રાગ તે હું છું અને રાગ મારામાં છે એવી ભ્રાંતિ છે, ત્યાં સુધી એ મિથ્યા દૃષ્ટિ છે. એ વાત સમજમાં આવી કે નહીં? અભી ક્યાં સમજા રહે? હવે કેટલાક કહે છે, કોઈ પ્રશ્ન? હા, હવે કેટલાક કહે છે, શું કહે છે, કે વ્યવહાર એટલે રાગ કરતા કરતા આત્માની અનુભૂતિ એટલે નિશ્ચય થાય. એને દો વાતે બતાવી, રાગ કરતા કરતા અરાગ આત્માનો અનુભવ થાય, અથવા કે વ્યવહાર કરતા કરતા નિશ્ચય થાય. દોનો મેં ડેશ ડાલ કે ઉન્હોને બાત બતાઈ. ક્યા કહે રહે? દેખો, કહા ગયા વ્યવહાર, સેકન્ડ લાઇન લાસ્ટ વર્ડ, ઉસી કા અર્થ રાગ ક્યા, રાગ કહો યા વ્યવહાર કહો, કરતા કરતા આત્માની અનુભૂતિ અથવા નિશ્ચય થાય. પણ એમ નથી, એ રાગ તો વિકલ્પરૂપ છે અને આત્મા તો નિર્વિકલ્પરૂપ આનંદ કંદ છે. આત્મા તો શુદ્ધ પવિત્ર આનંદ ઘન જ્ઞાયક રૂપ છે અને વ્યવહારના શુભરાવ તો જડ સ્વભાવી અશુદ્ધ, વહાં પવિત્ર અશુદ્ધ બતાયા, ઉસકે અગેન્સ્ટ અશુદ્ધ, પવિત્ર કે અગેન્સ્ટ અપવિત્ર, ઓર વહાં આનંદ કંદ છે તો યહાં દુઃખરૂપ છે. તેથી આત્મા તે રાગ છે અને રાગ તે આત્મામાં છે એવી એકપણાની માન્યતા ભ્રમ છે. પરસો આપણે પૂછ્યા હતા ને ઇન્દુબેન કે એ રાગ તો આત્મામાં પેદા હોતા ને, તો એ બતા રહે, દેખો એ ભ્રમ હૈ, ક્યુકે ભલે પૈદા હોવે પણ વો સ્વભાવ રૂપ નહીં. કિતના કિતના ડિફરન્સ બતાયા, દેખો 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 દેખો, એ નીચે સે એક દો તીન ચાર પાંચમી લાઈન, શુભભાવ તે કેવા છે, એ શુભભાવ તો જડ સ્વભાવી છે. દૂસરા પોઈન્ટ અશુદ્ધ છે, તીસરા પોઈન્ટ અપવિત્ર છે, ચોથા પોઈન્ટ દુઃખરૂપ છે. અભી ઇસકે ગુણગાન ગા કે થક ગયા, અભી કિસકે, શુભ રાખ કે. અબ કહેતે આત્મા કેવા છે, કે આત્મા તે રાગ છે. ક્યાં ગયા? અરે અભી તો પડા તા ઉપર ઉપર ઉપર, ઉસકે ઉપર ઉસકે ઉપર. આત્મા તો શુદ્ધ હૈ, યહાં ઉસકો પહેલે તો નિર્વિકલ્પ આનંદ રૂપ બતાયા, નહીં વો આગે આને વાલા હૈ. પહેલે શુદ્ધ કે અગેન્સ્ટ યહાં અશુદ્ધ બતાયા થા, અબ પવિત્ર કે અગેન્સ્ટ યહાં અપવિત્ર બતાયા, અબ આનંદ રૂપ કે બદલી યહાં દુઃખ રૂપ બતાયા. એસા દોનો મેં ઇતના ડિફરન્સ હોતે હુએ ભી ઉન દોનો કો એક ગિનના એક માનના યહ મિથ્યાત્મ હૈ, સમજા રહે વહ ભ્રમ હૈ એસા બતા રહે. જ્યાં સુધી નીચે સે થર્ડ લાઇન, બંને એકરૂપ ભાસે, ભાસે હો એકરૂપ નથી, તો ભાસ તો ત્યારે જ થાય કે જ્યારે એ એકરૂપ ન હોય ત્યારે, આપણને લાગે કે એક જ છે. કે જ્યાં સુધી બંને એકરૂપ ભાસે ત્યાં સુધી તે અજ્ઞાની અપ્રતિબુદ્ધ છે. પુણ્ય પાપના ભાવ સ્વરૂપમાં તો નથી, એ તો સ્વરૂપનો તિરસ્કાર કરવાવાળા अनादर करवा वाला छे, आम छे तो पण ए पोतापने एक रूप भासे ए अज्ञान छे। अभी ये तो ये कभी अप्रतिबुद्ध कब तक रहेगा उसकी बात बताए। अब कहते हवे जारे ते एम जाने के आत्मा तो ज्ञाताज छे अने कर्मनो कर्म पुद्गल नाज छे त्यारे ज ते प्रतिबुद्ध थाय छे। शुं कयूं के आ जाननार जाननार छे तेज आत्मा छे, जे आ जाने छे तेज आत्मा छे, अने परतरफना लक्ष्ये उत्पन्न थयेला रागादि भावकर्म अने शरीर मन वाणी इत्यादि नो कर्म ए पुद्गलना छे। जो आ पैसा बाईडी छोकरा वेपार धंधो ए तो बहु दूर रही गया, ए तो बधी पुद्गलनी पर्यायनी ज जात छे। अहीं तो दयादान व्रतादि विकल्प उठे ए पण पुद्गलना छे एम वात छे। तो आप कहेंगे ये पैसा वगैरह जो है वो तो पुद्गल है, ये तो हम समझे, पर ये बाईडी ये तो जीव है कि नहीं, उसको तो क्यों तुम ये कह रहे हो पुद्गल? क्या तो यहां समझा रहे भाई, वो पुद्गल इसलिए कह रहे हैं कि जो बाईडी है यानी जो आत्मा है वो तो तुझे कभी दिखता ही नहीं है। जो दिखता है वो बाह्य ऊपर का जो ढांचा है शरीर, और मैं स्वयं यानी तू स्वयं अपने को शरीर रूप मानता है तो उसको भी शरीर रूप मानता है, और तू उसके शरीर पर ही रींझता है, वो आत्मा है और आत्मा के ऊपर तू रींझता है, ऐसा थोड़ी है, इसलिए वो भी पुद्गल है। यहाँ तो शुभ भाव को भी पुद्गल कहा ना, तो अशुभ भाव को क्या पुद्गल नहीं कहेंगे क्या? हाँ तो क्या कह रहे देखो हुँ? अभी सबको लिया इसमें, ये तो जो अत्यंत भिन्न पर पदार्थ है ऐसे जो पैसा बाईडी छोकरा व्यापार धंधा ये तो सब दूर है यानी वो तो अत्यंत भिन्न है, तो ये तो बधी पुद्गलनी पर्यायनी ज वात छे। पण आई तो कोनी वात करे के पोतामां उत्पन्न थवा वाला जे दया दान व्रतादि विकल्प उठे ए पण पुद्गलना छे एम वात छे। और यही जैन दर्शन की विशेषता है, क्या कि ये जो राग भाव है पुण्य भाव है यह भी त्रिगु नहीं है, तेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए उसका आश्रय छोड़। और ऐसा करने में जब ही तू सक्सेसफुल होगा तभी तू प्रतिबुद्ध होगा। ख्याल में आया? ए चैतन्य न्यायकनी सत्तामा न्यायकना होवापनामा ए रागनी सत्ता नथी। अने रागनी सत्ता में भगवान न्यायकनी सत्ता नथी, एम शरीरनी सत्ता में आत्मानी सत्ता नथी, अने आत्माना हुवापनामा शरीरनी सत्ता नथी। भगवाननी भक्ति थाय, व्रत अने तपनो विकल्प आवे, उपवास करूं ब्रह्मचर्य पाळूं एवो शुभराग आवे, ए बधा शुभरागनी सत्ता में चैतन्य स्वरूप नथी, चैतन्य स्वरूप आत्मा नथी, अने चैतन्य स्वरूप आत्मा मा ए शुभरागनी सत्ता नथी। आवु जारे भेद ज्ञान थाय त्यारे ते प्रतिबुद्ध थाय। लियो आम रागादेती भेद करी ज्ञायक मा एक पने एकाग्रता करे त्यारे प्रतिबुद्ध थाय छे। अभी लोग कहते ना आइए यहां तो कुछ करने की धरने की बात ही नहीं कर रहे, क्या ये उपास करो अमुक करो तमुक करो शुभ भाव की बात यात्रा करो कुछ उसकी बात ही नहीं कर रहे, यहाँ तो बस अपने आत्मा को जैसा है वैसा जानो। तो बोलते ऐसा करने से क्या धर्म होगा, तू प्रयत्न तो कर कि सिर्फ अपने को जानने की कोशिश कर, अन्य किसी को जानना नहीं आना चाहिए तो तेरा काम हो जावे। लेकिन देखो हम खुद करके देखें दूसरे को क्यों, तो कितना हम उसमें सक्सेसफुल होते हैं। हमको तो लगता है ये क्या है, ये क्या करने का है, इसमें क्या बड़ी बात है। अरे वही सबसे बड़ी बात है जो अनादिकाल से आज तक इस जीव ने नहीं किया, तो करता था तो कब तक सिद्ध हो गया होता। ख्याल में आया? देखो क्या कह रहे, देखो ये नीचे से तीसरी चौथी लाइन है, ये आखिरी वर्ड बधा। शुभ राग नी सत्तामा चैतन्य स्वरूप आत्मा नथी, ये दोनों के डिफरेंस बताए ना। अने चैतन्य स्वरूप आत्मा मा ये शुभ राग नी सत्ता नथी। आवू जारे भेद ज्ञान थाय त्यारे शू थाय, त्यारे ते प्रतिबुद्ध थाय छे। ये सिर्फ जानना जानना जानना, यानी क्या जानना कि मैं राग रूप नहीं हूँ, राग में मेरी सत्ता नहीं है और मेरे में राग की सत्ता नहीं, ऐसा जान तो सही। जब तक तू जानेगा ही नहीं तो मानने का सवाल ही किधर है, और जब मानेगा तभी तो तू अपने स्वरूप में एकाग्रता स्थिरता कर पाएगा। इसलिए कहते हैं कि आवू जारे भेद ज्ञान थाय त्यारे ते प्रतिबुद्ध थाय छे। अब आगे अगला पैराग्राफ, ये दूसरा उदाहरण के माध्यम से और समझाते। जेम अरीसामा अग्निनी ज्वाला देखाय, क्या एम जनाय छे के ज्वाला तो अग्निमा छे, अरीसामा नथी पेठी, अरीसामा देखाय नथी, देख अरीसामा देखाय रही छे। तो मुझको लगा कि पेठी का वो अर्थ करते होंगे, पेठी यानी घुसी नहीं है। अरीसामा देखाई रही छे ते अरीसानी स्वच्छता जे छे शुं कहे छे, तेमा जे अग्निनी ज्वाला देखाय छे एटले प्रतिबिंब देखाय छे, ते ज्वाला अग्निनी नथी पण अग्निती पण नथी। क्या समझा रहे है? वो जो आईने में दर्पण में वह जो प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, वह अवस्था इस अग्नि की नहीं है और अग्नि के कारण से वहां प्रतिबिंब पड़ा ऐसा भी नहीं है। यह और डिफिकल्ट बात है, क्यों कि वहां जो कुछ ज्वाला दिख रही है वो दर्पण की अवस्था है, वो अवस्था ही अग्नि पलटा देवे बाह्य पदार्थ, नहीं ख्याल में है? देखो देखो फिर से पढ़ता हूं, अब ख्याल देना। देखो नया पैराग्राफ चालू होता है ना, जेम अरीसामा अग्निनी ज्वाला देखाय छे, क्या एम जणाय छे के ज्वाला तो अग्निमा छे। ये बाहर जो अग्नि जल रही है वो उसमें दिखती है। अब कहते अरीसामा नथी पेठी, ये तो आप समझ गए, अरीसामा देखाय रही छे ते अरीसानी स्वच्छता ज छे शू कहे छे, यानी इसका अर्थ क्या है? तो समझा रहे, तेमा यानी अरीसामा जे अग्निनी ज्वाला एटले प्रतिबिंब देखाय छे ते ज्वाला अग्निनी नथी, एक बात। दूसरी बात, अने अग्निती पण नथी। अब वो अरीसा को हटा दो और उधर एक आत्मा को रखो, जानने वाला आत्मा, तो उसके सामने ये कोई भी चीज रखी, क्लिप रखी रखी तो वो ज्ञान में आई। तो ज्ञान ने ये सामने क्लिप आई इसलिए ज्ञान ने जाना कि नहीं? अभी तो सीधा हो गए। अब वो वहां जो प्रतिबिंब हो रहा है इस अग्नि का, तो अग्नि के कारण से प्रतिबिंब हो रहा है क्या? अगर ऐसा होगा तो वो जो अरीसा है यानी दर्पण है उसकी उसका जो कुछ परिणमन होना है वो तो वो दूसरे पर पदार्थ के ऊपर अवलंबित होगा, यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करता है, ऐसी बात होगी। देखो कितनी गहराई है, एक मिनट में ऐसा बात घुमा दी कि दिमाग, हमारे पिनांग की भाषा में बोलना होगा तो दिमाग का दही हो जाता है, बोलते क्या होता है मालूम। हाँ, यानी अग्नि की ज्वाला आईने में दिख रही है वह तो अग्नि का परिणमन नहीं है, वह तो यानी दर्पण का परिणमन है। वो दर्पण का परिणमन क्या दूसरे पर वस्तु के हाथ में है क्या? अब यहां रखो इसके सामने, तो यहां अग्नि दिखी क्या? अगर अग्नि में ऐसी कैपेसिटी होती कि वह दूसरे के यहां प्रतिबिंबित होवे तो आईने में क्यों, तो फिर दीवार में भी दिखनी चाहिए। ख्याल में है ना? इसका अर्थ क्या हो गया कि यह जो अग्नि की जो अग्नि का जो प्रतिबिंब है वह अवस्था दर्पण की है। ख्याल में आप कुछ बताना चाहिए?
अभी रोज सुबह दर्पण के सामने जाओगे तो दर्पण में क्या दिख रहा है वो देखना पहले। हमने अभी तक क्या माना, ये मेरा प्रतिबिंब है, तो अभी क्या सोचना,
ये आईने का प्रति,
हाँ दर्पण की प्रति नहीं,
नहीं, तभी हा? ऐसा सोचना कि ये खूबसूरत चेहरा मेरा नहीं है, दर्पण का है।
यानी अकेले उतना ही नहीं लेना, बीच में शरीर खड़ा है, एक बाजू अपना ज्ञान दर्पण है, एक बाजू सामने का दर्पण है, तो हम दर्पण को भी देख रहे हैं और शरीर को भी देख रहे हैं। परंतु जब हम दर्पण में देखते हैं ना सुबह रोज, तो हम अपने को शरीर रूप अनुभव करके देखते हैं। अभी अपने को भिन्न अनुभव करना कि ये जो शरीर मेरे में ज्ञात हो रहा है वो मेरे ज्ञान की पर्याय मेरे अपने से हो रही है, शरीर के कारण नहीं हो रही। जैसे हमने दर्पण पर घटाया ना, दर्पण की जो अवस्था है वो दर्पण की अपनी स्वयं के कारण है, कोई भी द्रव्य की पर्याय किसी अन्य द्रव्य के कारण होती ही नहीं तीन काल में, तो दर्पण की अवस्था उसके अपने कारण हो रही है। वैसे ही ये जो शरीर मेरे ज्ञान में आ रहा है, मेरे ज्ञान में जाना जा रहा है, ये मेरे ज्ञान की अपनी अवस्था है, शरीर वहां है इसलिए वो ज्ञात हो रहा है ऐसा भी नहीं है। परंतु हुआ क्या, जिस क्षेत्र में ये ज्ञान है यानी आत्मा है उसी क्षेत्र में ये पुद्गल भी है, और अनादिकाल से इस जीव को इंद्रिय ज्ञान के द्वारा वो जानने की आदत पड़ ली, इसलिए आंखें खोलकर देखा कि जहां ज्ञान भासित होता है वहां शरीर भी दिखा, तो मैं शरीर हूं। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत अच्छी तरह से बताया कि अनादि से इसके इंद्रिय ज्ञान पाया जाता है और मैं हूं, इतनी तो एहसास है हर एक जीव को, मैं हूं के नहीं इसके बारे में किसी को संदेह नहीं है, मैं कौन हूं इसके बारे में संदेह,
कैसा हूं,
तो मैं हूं इतना तो पता चला। परंतु मैं हूं इतने इसके साथ साथ हमने आंखें खोल कर दिखी तो मैं किस रूप दिखा, ये शरीर रूप, तो यही मैं हूं इसने अनादि से मान लिया, इसके लिए इसको सिखाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। वहां ऐसा नहीं लिखा कि कोई स्वयं बुद्ध से और बोधित बुद्ध से अपने को शरीर मान रहा, ऐसा नहीं कहा। ख्याल है ना, शरीर से भिन्नता जाननी है तो कोई अपने से जानेगा या उपदेश से जानेगा, परंतु शरीर में जो अपनत्व अनादि से चल रहा है उसके लिए किसी को सिखाने की जरूरत नहीं रही। फिर भी हम सिखा देते अपने बच्चे को, ये तेरी फोटो है, देख आईने में ये तू कैसा दिख रहा है ना, उसको ऐसा नहीं समझाते कि आईने की पर्याय वो अलग है।
वो समझे ही नहीं ना, यहाँ नहीं समझ रहे ना।
बाकी तो बड़ी बड़ी चीजें समझाते, एक महीने के बच्चे के सामने भी उसकी बारात निकाल के वो कौन कौन आएगा, सब हाथी झूलेंगे, सब बताते हैं, और ये बातें बताने के लिए हमको ही नहीं समझता ना, इसलिए लगता है बच्चे भी नहीं समझेंगे। जो बातें हमें डिफिकल्ट लगती है हम कहते हैं हमारे बच्चे नहीं समझेंगे, इनको मत सुना। तो ये देखिए, इस तरह से ये जो दृष्टांत दिए है या दिन भर हमारे जो विचार चलते हैं इस पद्धति से हमको विचार करेंगे तो ये तो ज्ञानाभ्यास दिन भर चलता रहेगा मन ही मन में, शास्त्र खोलकर बैठेगी तो ही वो अपना अभ्यास है, ये बात नहीं है। इस तरह का जो
हम जो पूजा बोलते हैं ना उसमें भी ऐसा लिखा है, ज्ञानाभ्यास करे मन माही
ताके मोह महात्म नाही,
ताके मोह महात्म नाही, यानी जो मन में यानी दिन रात ऐसी ही शास्त्र की भाषा, ज्ञानाभ्यास ऐसा पढ़ के बैठना 24 घंटा ऐसा देखना ऐसा नहीं, अरे रसोई करो, खाना खाओ, जो भी करते हो करो, लेकिन ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताके मोह महात्म नाही, यानी उसको परद्रव्यों के प्रति मोह उत्पन्न ही नहीं होगा, कि बार बार सोचेगा कि ये जो मेरे हाथ में पेंसिल है वो पेंसिल और हाथ जुदी है, दोनों में अन्योन्य अभाव, ऐसा करते 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 अभाव में लगाओ, और चाहिए तो वो स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त है, मैं तो अस्पर्श हूँ अरस हूँ, ये अलिंग ग्रहण के बोल लगाओ। ये ज्ञानाभ्यास ये इस तरह से हमें होना चाहिए। तो कहते हैं वो ऐसा जो करेगा तो उसके तो पर प्रति, अभी हमने 100 रुपए के नोट क्या 1000 रुपए के नोट देखी, ये तो पुद्गल है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, बस हमने स्वरूप को जाना तो उसके प्रति मोह नहीं होगा, लेकिन हम पर्याय पर अरे हजार किए भाई, तो हमने कहा देखा उसके पर्याय पर देखा, ख्याल में है ना, तो वो उठाने का मन होगा। ये बिल्कुल भाई, हम पूजा भी बोलते हैं तो पूजा रचने वालों ने भी ऐसे लोग थे, एक एक ज्ञानतराय जैसे कि जो स्वयं आत्मज्ञानी थे, उन्होंने ऐसी बातें लिखी, हम कभी सोचते ही नहीं उसके बारे में। अभी क्या बात हो रही है देखो देखो, ये थर्ड लाइन से पढ़ता हूँ, सेकंड पैराग्राफ, तेमा जे अग्निनी ज्वाला देखाय छे, यानी अरीसा मा जे अग्निनी ज्वाला प्रतिबिंबित थाय छे, ते ज्वाला अग्निनी नथी अने अग्निती पन्न नथी, यानी अग्नि के कारण से वहां प्रतिबिंब पड़ा है ऐसा है नहीं, ये तो भले भले को पागल बना देवे ऐसी बात है। तो अभी बताया ना, जैसा हम आईने के सामने जाके खड़ा हो जाए तो वो मैं आया इसलिए वो प्रतिबिंब आया, ऐसा थोड़ी है। पहले कौन आता है, प्रतिबिंब आता है कि पहले अपन आते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, इसलिए इसको भ्रम है। ख्याल में आया ना कि मैं खड़ा हुआ इसलिए मेरा प्रतिबिंब, मैं खड़ा ही नहीं होता तो पीछे का कुछ भी आता था, डरना मत। तो हम तो ऐसे ही सोचते हैं कि मेरे कारण प्रतिबिंब हुआ, अरे नहीं भाई, वो भी तो पुद्गल है, उसकी उसमें भी स्वच्छत्व नाम का जो अभी गुण दिख रहा है उसके कारण कुछ ना कुछ प्रतिबिंब तो होवे, उसी को तो हम आईना कहेंगे, जिसमें रिफ्लेक्टिविटी है उसी को तो हम आईना कहते हैं, नहीं तो दीवार में कोई रिफ्लेक्टिविटी नहीं तो इसको आईना कौन कहेगा क्या, घर में एक भी आईना नहीं लगेगा, दीवार में ही बाल बनाएंगे लोग। ख्याल में तो बिल्कुल, यहाँ तो प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का तो यहाँ दांडी पीटी ने बात करे थी, कल बात आई थी ना कि स्वामी जी हर बात में एक एक को ऐसी एक एक बात बताते हैं कि चक्कर आ जाए। क्यों अभी हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि पहले आईने में प्रतिबिंब आता है कि मैं आता हूँ, आईने में कौन आता है, अरे भाई दोनों का एक साथ ऐसा परिणाम होता है, अपने को वहां सामने जाना और वहां उस रूप से प्रतिबिंबित होना, अगर मेरे कारण आईने में प्रतिबिंब होता है तो फिर आईना परावलंबी हुआ, यानी पुद्गल द्रव्य परावलंबी हुआ, मेरे बलबूते पे वो चले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है अपने अपने परिणमन में, दोनों परिणमन एक साथ होते हैं तो हम समझते, देखो मैंने हाथ उठाया तो ये हाथ का ऊपर आना और मेरी इच्छा से वो है मैं यहाँ लाऊं ऐसा होना, तो ऐसा होता है तो मैं सोचता हूँ कि देखो मैंने ऐसा सोचा इसलिए ऐसा हुआ, सोचने फोचने से कुछ नहीं होता है। ख्याल में बहुत बढ़िया बात है,
ये प्रैक्टिकल तो, करना कल आईने के सामने ब्रशिंग करते ना, टूथब्रश हिल रहा है तो मैं हिलाता हूँ तो हिलता है क्या नहीं है, और आईने में जो दिख रहा है वो जो हिलता हुआ वो क्यों, वो आईने की अपनी स्वतंत्र अवस्था है।
अब ऐसी डिफिकल्ट बात बताएंगे तो कल आईने के सामने कोई नहीं जाएगा,
नहीं वहाँ से कोई हटेगा नहीं, फिर हमारे हमारी बहुएं और हमारी बेटियां कहेंगे क्या हुआ मम्मी को, आईने के सामने से हट नहीं रही है, उनको कुछ भी सोचने दो, हम अपने तरीके सोचेंगे।
जैसा आप कहते कि ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कौन जाके पढ़ने वाला है, कौन जाके देखने वाला है, वैसा अरे तुम कल जाके आईने में ये प्रैक्टिकल करो, कोई जाने वाला नहीं, आंख बंद करके वहां काय को ज्ञान अभ्यास करे, वहां पर अपने को रसोई करने। चलो चलो, ये तो हम किसी भी प्रकार से आपको उकसा रहे हैं, किस बात के लिए, कि ऐसा भेद ज्ञान करने के लिए, क्योंकि शास्त्र में तो ऐसे ही कथन है कि जीव को भय भी उत्पन्न करके धर्म में लगाते हैं, भय करके जुगुप्सा लाके भी उत्पन्न कराएंगे, ये शरीर ऐसा घृणावना है उसमें ऐसी ऐसी गंदगी भरी है, तो इससे क्यों तू यारी करता है, क्यों प्रीति करता है, ऐसा करके शरीर के प्रति थोड़ी सी घृणा उत्पन्न करे, और तू ऐसा नहीं करेगा तो कहीं निगोद में चला जाएगा, ओहो हो, ऐसा करके भय उत्पन्न करके धर्म में लगाए। लालू जी दिखाते हैं कि तू मंदिर में जाएगा भगवान के दर्शन करेगा तो तुझे ऐसा ऐसा फल मिलेगा, अच्छा चलो चलो, चलो। ये शास्त्र की पद्धति है बहन, ख्याल में आए।
कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा है ऐसा ऐसा कषाय उत्पन्न करके भी धर्म के मार्ग में लगाते हैं, ये उपदेश का तरीका होता है ना ऐसा। प्राथमिक जो जीव है उनको ऐसा भय या कैसे कोई भी करके या लोभ थोड़ा पुण्य का थोड़ा इस मार्ग में आते हैं, फिर बाद में उनको सही रास्ता मिल जाता है कि वह पुण्य में कुछ नहीं रखा है।
लेकिन अपनी ऐसी अवस्था नहीं हुए कैसी, उस ब्रह्मचारी के जैसी। एक ब्रह्मचारी मिले तो उन्होंने कहा मैंने पूछ बातचीत कर, वही ब्रह्मचर्य क्यों लिया साहब आपने, साहब आप जानते नहीं है अभी ब्रह्मचर्य में रखूं तो मुझे स्वर्ग में जाने को मिलेगा और वहां तो 32 रानियां मिलेगी मुझको देवियां, तो उसका काहे का ब्रह्मचर्य रहा बोलो, यही नहीं है क्या भी उसकी अभिलाष वैसा हमारा नहीं हुआ। अच्छा मंदिर में जाने से इतना पुण्य होता है, चलो कल से चालू करो, फिर 3 बार जाओ 4 बार जाओ दिन में, वैसा 9 बार जाके 9 मुसलमान मत बनना भाई। वहां भेजने का प्रयोजन ही है कि वहां जो शास्त्र स्वाध्याय चलता है उसे भी हम सुनना चाहिए, और वहां नहीं चलता हो भाई चांद तो अपन स्वयं करना चाहिए। स्वाध्याय एक बात ऐसी है कि जो वस्तु के स्वरूप को सही रूप से बताए, क्योंकि आज तो ऐसे है ना साक्षात तीर्थंकर तो है नहीं, मुनियों के भी हमारे पास इतना सानिध्य नहीं है, और होगा तब भी उनको कहाँ फुर्सत है हमें प्रत्येक को सिखाने के लिए। तो शास्त्र ही एक बात ऐसी है कि जिसके कारण हम वस्तु का स्वरूप समझ सके, इसलिए ये न केन प्रकार है न शास्त्र स्वाध्याय को लोगों को प्रेरित करना चाहिए। यहाँ तो ऐसा दिया है कि कोई शास्त्र स्वाध्याय करता हो तो उसकी आजीविका की भी व्यवस्था करनी चाहिए। बोलो हम नहीं करते हैं क्या, मुनिराज आते हैं कौन से उनके पास अनाज होता है, पर हम उन्हें आहार दान देते हैं, क्यों देते हैं कि उनके अंतरंग में स्थिरता और बढ़ती जाए, खाने के विकल्प भी नहीं खड़े हो जाए। फिर वैसा करने के लिए तेरे को इतना पुण्य मिलेगा तो चले एक के यहाँ महाराज पटे तो 25 औरतें घुसी वहां धवा धव खिलाने के लिए। ये लोभिया जीव कहाँ कहाँ फिसल जाएगा उसका भरोसा नहीं। हमें तो वस्तु स्वरूप समझकर बराबर मार्ग क्रमणा करनी चाहिए। अभी क्या कह रहे देखो देखो, पहले तो ये बात हुई कि तेमा जे अग्निनी ज्वाला देखाय छे, ते ज्वाला अग्नि नथी, ये तो वो जो प्रतिबिंब है वह तो आईने का मतलब दर्पण का है, और कहते हैं कि अने अग्निति पण नथी एटले ते ज्वाला एटले ते जे प्रतिबिंब छे ते अग्निति पण थयु छे एम नथी, ए तो अरीसानी स्वच्छतानी दशा छे, ए अरीसाना स्वभाव ने कारणे छे, अरीसानी स्वच्छता नो स्वभाव जेवो छे के पोतानी स्वच्छता ने बतावे, अने सामे चीज छे एनो जे पोतामा प्रतिवास थाय तेने पन बतावे। यानी क्या कहते हैं कि आईने में कभी ऐसा होता होगा क्या कि उसमें कोई भी प्रतिबिंब नहीं होता हो, हाँ ऐसा कभी होता है कि नहीं, और अंधेरे में क्या होता है, अरे कालापन है ना उधर ख्याल में, यानी वह अपनी स्वच्छता तो हर समय प्रदर्शित करता है और साथ साथ में जो रिफ्लेक्ट होता है उसको भी बताता है, ख्याल में। देखो क्या बता रहे, ये जो ब्रैकेट पूरा हुआ ना, अरीसानी स्वच्छता नो स्वभाव जे वो छे के ते पोतानी स्वच्छता ने बतावे, स्व पर प्रकाशक ये स्व प्रकाश, अने सामे चीज छे एनो जे पोतामा प्रतिभास थाय एने पन बतावे। ये दोनों जैसा ज्ञान में भी ऐसी बात होती है ना, स्वयं जानता भी है और जो जानने में आता है वो भी जानता है, स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। खरेखर अरीसामा जे देखाय छे ए ज्वाला नथी, पन ए तो अरीसानी स्वच्छता छे, सामे बरफ होय अने पिघळतो जाय ए अरीसामा देखाय छे, ए बरफ ने लईने नथी के बरफ एमा छे एम पन नथी, त्यां तो अरीसानी स्वच्छता नू ज अस्तित्व छे, बरफ नू नथी तेमज જેની સત્તામાં એટલે હોવાપણામાં આનંદ અને જ્ઞાન ભર્યું છે, તેમાં રાગનું જે જ્ઞાન થાય એ જ્ઞાન એની પોતાની સત્તામાં છે, એ જ્ઞાન એટલે રાગનું જ્ઞાન, પણ રાગ એની સત્તામાં નથી. ક્યાં કહા? દેખો આત્મા કા સ્વભાવ ક્યાં હૈ, મેં સમજાવતો દો મિનિટ મેં. આત્મા કા સ્વભાવ જ્ઞાન હૈ, જ્ઞાન દર્શન વગેરે છોડ, જ્ઞાન હૈ. તો જ્ઞાન કહા હૈ? તો જ્ઞાન આત્મા મેં હૈ. અબ ઉસ જ્ઞાન મેં રાગ કા જ્ઞાન હો રહા હૈ, તો જ્ઞાન કા રાગ આત્મા મેં હૈ, સોરી રાગ કા જ્ઞાન આત્મા મેં હૈ, લેકિન રાગ આત્મા મેં નહીં હૈ. ક્યા હુઆ? રાગ કા જ્ઞાન આત્મા કા હૈ, આત્મા મેં હૈ, લેકિન વો રાગ આત્મા મેં નહીં. દેખો ફિર સે વહી બાત બતા રહે, યે નીચે સે સાતવી છઠ્ઠી લાઇન આઠવી લાઇન જો ભી હૈ, સેકન્ડ વર્ડ હૈ તેમ જેની સત્તામાં, એટલે હોવાપણામાં આનંદ અને જ્ઞાન ભર્યું છે. અને હમ યહાં લેતે કે આત્મા મેં જ્ઞાન ભર્યું છે, હં, તેમાં રાગનું જે જ્ઞાન થાય તે જ્ઞાન એની એટલે આત્માની એટલે પોતાની સત્તામાં છે, પણ રાગ એની એટલે આત્માની સત્તામાં નથી. આપ સમજ મેં આયા વિરેશભાઈ? દેખો કેસા સમજા રહે કે જ્ઞાન તો હૈ કિસકા, સ્વ કો જાન રહા હૈ વહ ભી જ્ઞાન હૈ, પર કો જાન રહા હૈ વહ ભી મેરે મેં હી જ્ઞાન હૈ, લેકિન પર પદાર્થ જો હૈ વો મેરે મેં નહીં હૈ. જૈસા આઈને મેં જો અગ્નિ તો નહીં હૈ, અગ્નિ કા પ્રતિબિંબ હૈ, વૈસે યહાં મેરે મેં પર પદાર્થ કા જ્ઞાન હૈ, પર પદાર્થ નહીં હૈ. વૈસે રાગ પર પદાર્થ કા જો હૈ વો રાગ કા જ્ઞાન મેરે મેં હૈ, રાગ નહીં હૈ.
देखो अग्नि में अरीसे में अग्नि का प्रतिबिंब देखकर हम ऐसा तो नहीं समझते कि अरीसा जल रहा है, कि मानते हैं? नहीं मानते. परंतु ज्ञान में जब राग भासित होता है तो हम राग रूप हो गए हैं, ऐसा मानते हैं, है ना? कि दुख यहाँ क्यों भासित हो रहा है? क्योंकि राग को अपने रूप मान लिया, इसलिए राग आग जले
आग
दहे सदा
ताते समामृत से ये.
तो ये राग से अपना भिन्न स्वरूप जो है उसको जानना है. जैसे दर्पण में जो प्रतिबिंब है उससे वो दर्पण की अवस्था है, अग्नि उससे अलग है, भिन्न है, वैसे राग अपने से भिन्न है, उस संबंधी ज्ञान हो रहा है. अब उससे भेद ज्ञान करना है, किससे? ज्ञान से कि राग से? राग से. हमारे में जो राग जानने में आ रहा है वो ज्ञान की अवस्था है, वो तो अपना स्वरूप है, जानना अपना स्वरूप है, परंतु राग को जाना इसलिए हम राग में नहीं हो गए, ये जानना है. हमने भ्रांति की थी, भ्रमणा की थी कि हम राग रूप हो गए हैं, और अभी स्वीकार करना है कि हम राग को जानते हैं परंतु राग रूप हुए नहीं है. ये बात यहाँ दर्पण के उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं.
તો ઉન્હોને ક્યા બતાયા? રાગનું જે જ્ઞાન થાય એ જ્ઞાન પોતાની અવસ્થામાં છે, પણ રાગ મારી અવસ્થામાં નથી. બસ યહાં તક આયે. અબ ભગવાન આત્મા ન્યાયક જ્યોતિ ચૈતન્ય અરીસો છે. અભી વહાં તો અભી ક્યા કહા કે એ આત્મા કો હી ચૈતન્ય અરીસો બનાયા દર્પણ, એમાં શુભાશુભ ભાવની વૃત્તિઓ જે છે તેનો પ્રતિભાસ એટલે પ્રતિબિંબ થાય છે. પ્રતિભાસ એટલે જ્ઞાન થાય. એ જ્ઞાનનું અસ્તિત્વ તો પોતામાં છે, પણ શુભાશુભ ભાવની વૃત્તિઓનું અસ્તિત્વ આત્મામાં નથી. ઇન્દુબેન બાત અભી આપ બેઠતી હૈ બરાબર? એ જ્ઞાનમાં એ શુભાશુભ ભાવની વૃત્તિઓ જણાય અને આત્મા જણાય, પણ પરને એટલે શુભાશુભ ભાવની વૃત્તિઓને લઈને જ્ઞાનનું અસ્તિત્વ છે એમ નથી. યાને ઉસકે કારણ ઇસ જ્ઞાન કો એસા જ્ઞાન હુઆ હૈ, ક્યુંકે સામને એસા રાગ ઉત્પન્ન હુઆ. અગર રાગ હી ઉત્પન્ન નહીં હોતા તો આ જ્ઞાન કેસા જાનતા, એસા હોગા હી નહીં. कि जिस समय ज्ञान में अभी राग को जानने का कार्य हो रहा हो उस समय सामने राग होगा ही होगा, ऐसी बात है। ए राग छे माटे राग नु आई ज्ञान थयू एम नथी। जीनो मार्ग भाई, संप्रदाय ना मानसो नवा आवे एमने थाय के आते शू कहे छे, आवो धर्म बापा। अभी क्या था, यहाँ जब वो कन्वर्ट होके, मतलब वो तो पहले मुंह पट्टी में थे ना, क्या बोलते हैं उसमें, स्थानकवासी में थे, तो वहां से उन्होंने जब समझा कि ये कोई सच्चा मार्ग नहीं है, तो ये जैन दर्शन जो है वो तो ये दिगंबरों के मुनियों ने और भगवान ने बताई हुई बात वही सच्ची है, तो उन्होंने वो मार्ग का त्याग किया और यहाँ आए। तब लोगों की ऐसी वृत्ति होती है, कैसी, कि दिनेश भाई के यहाँ क्या चलता है देखो तो सही, ऐसा करके आते ना। वैसे वहाँ स्वामी जी के पास शू के जे जो तो आप जोवा तो जाए तो कहते संप्रदाय ना नवा मानसो, मानसो नवा आवे, यानी जिन्होंने ये बात बार बार सुनी है, जैसे हमारे वीरेश भाई आके सुन रहे अभी चिटके यहाँ पर, और उनके मित्र गायब हो गए ना, नवा मानसो क्या कह रहे, देखो नवा मानसो आवे इमने थाय के आते शू कहे छे, ये कौन सी बात कर रही है, हमने तो कभी राग क्या है क्या है क्या है, वो मेरे में नहीं है उसका वो नहीं है उससे एना दीदे न थी, ये कुछ समझ में नहीं आ रही बात। तो कहते आवो धर्म बापा, जिनेश्वर ना मार्ग नो धर्म तो आवो छे, चैतन्य बिंब पड़ियु छे ने अंदर, तेमा सामी जे चीज छे ए प्रकार ना एटले ज्ञेय ना ज्ञान रूपे परणवु अने जाणवु अने एने जाणवु ए तो पर्यायनो ते क्षणनो धर्म छे। खरेखर तो ए ज्ञेय संबंधी पोतानी जे ज्ञाननी परिणति एने जाने छे। अभी और एक नई बात बताई, नहीं समझ में, हाँ बताता हूँ मैं इसलिए बोला कि नई बात है इसमें, क्या बात बताई है यहाँ, ये समझा रहे हैं कि जब कोई विशेष ज्ञान उनके हो रहा है, राग का ज्ञान हो रहा है, तो ये राग का जो ज्ञान हो रहा है वह राग को नहीं जान रहे, वो जो उस समय की जो ज्ञान की पर्याय है उस ज्ञान की पर्याय को जान रहे, क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ ज्ञान तो होना है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये तो ज्ञान को नहीं जान रहे, ज्ञान जिस पर्याय में प्रतिबिंबित हो रही है उस पर्याय को ज्ञान जान रहे। देखो फिर से इन्हीं जो पिछला पेज है ना 56 उसके नीचे के लाइन, तेमा सामी जे चीज छे, चैतन्य बिंब आत्मा है ना, तेमा सामी जे चीज छे ए प्रकार ना ज्ञेय ना ध्यान रूपे परणवु, ये तो वो सामने वाली वस्तु है इसलिए परिणमता है, ऐसा नहीं स्वयं ही उस रूप परिणमता है, वहां निमित्त रूप से सामने कोई ना कोई ज्ञेय है जिस रूप से ये ज्ञान परिणमित हो रहा है। एने जाणवु ए तो पर्यायनो ते क्षणनो धर्म छे, उस पर्याय में उसी का ज्ञान होगा। खरेखर अभी वास्तव में क्या है, क्योंकि यहां भेद हो गया ना बिन, तो कहते खरेखर तो ए ज्ञेय संबंधी पोतानी जे ज्ञाननी परिणति एटले पर्याय एने जाने छे। दिस अल्टिमेटम हेतर यहाँ गेय के कारण ज्ञान होता नहीं, ये तो बहुत स्थूल बात हुई। अभी कह रहे कि गेय संबंधी जो ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान की जिस पर्याय में हो रहा है वह ज्ञान उस पर्याय को जान रहा है, वो गेय को नहीं जान रहा है, गेय के प्रतिबिंब को नहीं जान रहा है। अभी हम ऐसा लेते हैं, राग को लेते हैं, तो राग था यहाँ, राग का ज्ञान होने वाली पर्याय हुई उस समय सामने राग था। अब ये तो बात नक्की कि राग के कारण ज्ञान हुआ ऐसा नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान के कारण हुआ, उस समय की जो पर्याय थी उसने उस राग को जानने का कार्य किया, ऐसा हम पहले कहते आए। अब कहते हैं ये जो जानने वाली जो पर्याय है उसने उस राग को नहीं जाना है, वो जानने वाली पर्याय को स्वयं को जाना है। हाँ, बिल्कुल
ज्ञान की पर्याय अपने में जान जो जो चीजें जानी जाती है
उसको जान
उस ज्ञान पर्याय को ही जान रही है। परंतु कहेंगे कैसे कि सामने पेंसिल है तो हमने पेंसिल को जाना, परंतु हमने किसको ज्ञान जाना, हमने अपनी ज्ञान को जाना जो पेंसिल को जान रहा था। ख्याल है, अपनी ज्ञान पर्याय कहीं गई नहीं ना बाहर, तो किसको ज्ञान जाना, हमने तो अपनी ज्ञान को पर्याय को ही जाना। तो अपनी ज्ञान पर्याय क्या कर रही थी, उस संबंधी ज्ञान कर रही थी, तो हमने उस ज्ञान पर्याय को ही जाना, ये बात यहां बता रहे। यानी ज्ञान स्वयं को, अभी जानने वाली तो पर्याय होती है, तो पर्याय स्वयं को ही जानती है और उस पर्याय में जिस ज्ञेय संबंधी ज्ञान चल रहा है उस ज्ञान को ही वो जानती है। वो समझाने के लिए हम कहते हैं सामने वाले ज्ञेय को जाना।
देखो फिर से पढ़ेंगे हम, ऐसे दौड़ा दौड़ी नहीं करनी है। देखो क्या कह रहे हैं, तेमा केमा चैतन्य बिंब जे अरिसो छे, चैतन्य अरिसो એટલે आत्मा छे, तेमा सामी जे चीज छे, जो सामने चीज है वस्तु है, ए प्रकार ना एने उस प्रकार का ज्ञेय ना ज्ञान रूपे परणमु एने जाणवु, ए तो पर्याय नो ते क्षण नो धर्म छे। अभी हम थोड़ा सा दूर जाते हैं, क्रमबद्ध पर्याय है कि नहीं, तो ज्ञान की क्रमबद्ध पर्याय भी है, यानी हर समय ज्ञान 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 होना और उस पर्टिकुलर कोई विशिष्ट एक पर्याय में जो कुछ ज्ञान होना है वह भी निश्चित है। और वो जानने का कार्य कौन कर रहा है, स्वयं पर्याय। अब वहां क्या कहते हैं, जब उसको किसी विशिष्ट वस्तु को जानने का कार्य हुआ तो सामने वो निमित्त रूप से वह वस्तु होगी, कि ये होगा वो ज्ञेय के कारण ज्ञान हुआ, ये बात तो अभी हमने समझ ली है। अब यहां समझाते हैं, ये जो पर्याय किसी वस्तु को जान रही है तो अब ये समझा रहे हैं कि यह सामने वाले वस्तु को जानने वाली जो पर्याय है उस पर्याय को ही यह पर्याय जान रही है, वस्तु को नहीं जान रही। ख्याल में ऐसा, देखो फिर से अबे ए तो पर्याय नो धर्म छे, पहली लाइन, खरेखर तो ए ज्ञेय संबंधी पोतानी जे ज्ञाननी पर्याय, परिणति छोड़ी दो, परिणति कहो पर्याय कहो, एने ए जाने छे। ख्याल में आई बात, देखो थोड़ा सा सूक्ष्म सूक्ष्म करके लाते हैं वे। अब आगे क्या बताए, आ बधा ज्ञानी कहे छे के देवगुरु नी भक्ति करो तेथी एमाथी मार्ग मळी जशे। आई कहे छे के भक्ति ए राग छे, ए राग जे थाय तेज समय नु ज्ञान स्व अने परने जाणतु परिणमे। अब ये ज्ञान जो है स्व ने जाने એટલે કોને જાણે, पर्याय पर्याय ने जाने, पर ने એટલે જે પરમ એમાં જે ઝલકતો હશે એને પણ જાણે। તો हाँ, तो अभी क्या, अभी जो बताया ना कि आपने पूछा था ना कि एक ही पर्याय एक समय में अपनी पर्याय को जानती है, हाँ उसमें स्व पर प्रकाशक शक्ति है, ये बात बता रहे, क्योंकि वो पर्याय की शक्ति है ना, पर्याय में प्रकट होने वाली। क्या कहा, देखो देखो देखो, कि भक्ति ए राग छे, थर्ड लाइन, ए राग जे थाय तेज समय नु ज्ञान स्व ने पर ने जाणतु परणमे, एवी पर्याय नी ताकात थी ए राग ने जानी रियु छे, राग ने जानी रियु छे ए पन व्यवहार थी छे, निश्चय थी तो राग संबंधी ज्ञान अने पोता संबंधी ज्ञान ने जानी रियु छे। वही तो बात है, उन्होंने पूरा बताया इसलिए मैंने पूरा पढ़ा, अभी स्लोली स्लोली पढ़ना है तो और आधा आधा करके पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञान का स्वभाव कैसा है, जानना जानना, हाँ स्व पर प्रकाश, जानना तो है लेकिन जानना यह उसकी पर्याय है, स्वभाव स्व पर प्रकाशक है। अभी वो ज्ञान यह गुण है कि नहीं, तो उसकी पर्याय होगी क्या, नहीं तो पर्याय में उसका स्वभाव रहेगा या खाली गुण में ही रहेगा, पर्याय में भी व्यक्त होगा कि नहीं, क्योंकि जानने का कार्य ही पर्याय में हो रहा है। ख्याल में आया ना, तो अभी कहते हैं कि उस समय जब हम एक पर्याय की बात कर रहे हैं तो वह पर्याय स्व को भी जान रही है और पर को भी जान रही है। अभी पर को यानी पर पदार्थ को जान रही वो पर्याय, ये कहना व्यवहार है, क्योंकि दो भिन्न वस्तु हो गई ना, पर को जान रही है। दो भिन्न वस्तु में एक बात बताई हमने, तो वह क्या हो गया? व्यवहार। अब वह पर्याय, पर्याय को यानी अपने स्व को जान रही है, वह निश्चय हुआ। अब वो स्व में क्या जाना रहा है कि वो पर वस्तु को जान रही है, वो देख देखा उसने जाना, तो जाना तो वो जानने वाली पर्याय ने स्व को जाना, ख्याल में? स्व और वो पर को जान रही, वो पर को जानना कहना ये व्यवहार, और स्व को जान रही है कहना निश्चय। मिली भाई नई बात ख्याल में आई, फिर से पढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी, नहीं वो बात यहाँ नहीं है। नहीं देखो देखो फिर से देखो, ये क्या कह रहे हैं, थर्ड लाइन से पढ़ रहा हूँ। ए राग जे थाय तेज समय ज्ञान स्व अने परने जानतु परिणमे। अभी ये तो ज्ञान कैसा परिणमित हो रहा है, स्व और पर को जानते हुए। अभी क्या कहते हैं, एवी पर्यायनी ताका थी ए राग ने जानी रही छे, यानी राग को वह जान रही है वह एक समय। अभी समझो हम 10 नंबर की पर्याय राग को जान रही है, तो क्या वह जानना जो हो रहा है वो राग के कारण हो रहा है क्या? वो तो हमने रूल आउट किया, कहते कि नहीं, वो ज्ञान की वैसी उस समय की क्षमता है, योग्यता है कि राग को जाने। अब कहते हैं राग ने जानी रही छे, अभी समझाते हैं, राग ने जानी रही छे ए केवू ए पन व्यवहार छे, ए व्यवहारती छे, राग ने जाने छे व्यवहारती छे। तो मैंने शब्द को बदलकर अपनी भाषा में समझने के लिए बताया कि राग ने जाने रही छे एम केवू ए पन व्यवहार नय छे, ए व्यवहारती कहूं छे, ख्याल में? क्योंकि देखो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को जान रहा है, ये कहना व्यवहार नहीं है क्या? भेद हो गया कि नहीं? तो अभी वो पर्याय पर को जान रही, ये कहना व्यवहार है, इसमें क्यों आपको प्रॉब्लम हो रहा है? ख्याल में क्यों नहीं आ रही वस्तु? बिल्कुल दो भिन्न करके हम जब वर्णन करते हैं तो दो वस्तुओं का एक, ऐसा हम कहते हैं। देखो अरे द्रव्य में ज्ञान है, दर्शन है आदि जो है ना, वह भी व्यवहार है, ऐसा हमने बात ली थी ना। हाँ, वैसा एक पर्याय पर पर्याय को यानी पर राग को जान रही है, ये भी कहना व्यवहार है ना, ये उसको जान रही है कहना व्यवहार। तो उसमें निश्चय क्या घटित होता है वो समझा रहे। देखो राग नीचे से थर्ड लाइन, राग ने जानी रही छे ए पन व्यवहार थी छे, निश्चय थी तो। अभी निश्चय क्या है? राग संबंधी ज्ञान अने पोता संबंधी ज्ञान ने जानी रही छे। तो राग संबंधी ज्ञान क्या थाय छे? पर्याय मां ते पर्याय ने जाने छे, ए स्व ने जाने छे अने पर्याय ने पर नहीं जाने छे। तो मूल बात प्रथम दशा समझाए नहीं अने पछी चारित्रा ने व्रत क्यांथी आवे, मूल एकड़ा विनाना मिंडा शा कामना, यानी ये मूल बात ही हम नहीं समझ रहे हैं। हम तो पर को ही जानते, पर को ही जानते या स्व को ही जानते, ऐसा अटक के बैठेंगे वो बात नहीं है। यहाँ तो ये समझा रहे हैं कि वास्तव में पर्याय पर्याय को जानना यह निश्चय है, यानी पर्याय में क्या आया कि पर संबंधी जो ज्ञान हो रहा है उसको जान रही है और वह स्व है, इसलिए स्व को और उसको जानना ये निश्चय हो गया, और पर्याय ने राग को जाना ये कहना व्यवहार है। तो वास्तविकता कौन सी है कि ज्ञान की पर्याय अपने को ही जानती है? हाँ हाँ बराबर, इसीलिए तो उसको रूल आउट किया ना व्यवहार नहीं है करके। अभी इसमें कुछ नहीं समझाओ तो हम फिर से दोबारा ट्राई करेंगे। देखो देखो अभी ये जो स्व पर प्रकाशक पना जो है वो पर्याय में होगा कि नहीं? हाँ, तो अभी पर्याय को, पर्याय स्व को जानेगी यानी किसको जानेगी? उस समय की पर्याय को। हाँ, क्या पोता संबंधी ज्ञान ने, यानी स्व के संबंध के ज्ञान को जान रहे, और क्या है राग संबंधी ज्ञान, ये हो गया पर, और पोता संबंधी हो गया स्व। हाँ देखो, राग को जान रहा ये कहना व्यवहार हो गया। अभी जो इसमें निश्चय जो है तो राग संबंधित ज्ञान छे, ये ज्ञान नहीं जाने छे। बिल्कुल ऐसे ही है, राग संबंधित ज्ञान अने पोता संबंधित ज्ञान ने जानी रही छे।
अभी आपने अग्नि को देखा दर्पण में नहीं, आपने डायरेक्ट अग्नि को देखा, तो क्या हुआ, अग्नि संबंधी ज्ञान हुआ आपको, तो आपने अग्नि को जाना, ये कहना व्यवहार होगा। तो आपने क्या जाना किसको, तो जिस ज्ञान में अग्नि का ज्ञान हो रहा था उस ज्ञान की पर्याय को ही ज्ञान की पर्याय ने जाना है। तो ज्ञान की पर्याय ने अपने को ज्ञान रूप भी जाना और ज्ञान में झलकने वाले अन्य संबंधी ज्ञान को भी जाना, अग्नि संबंधी ज्ञान को भी ज्ञान ने जाना, और ज्ञान ने ज्ञान संबंधी यानी आत्मा संबंधी अपना भी ज्ञान कर लिया, ये उसका स्व पर प्रकाशकपना हुआ। एक ही ज्ञान के पर्याय में स्व संबंधी और पर संबंधी ज्ञान हुआ, तो ज्ञान ने क्या किया, ज्ञान ने अपने ज्ञान को जाना। परंतु वो समझाने के लिए ज्ञान ने ज्ञान को जाना, ज्ञान को जाना, अरे अनादि से ज्ञान ज्ञान को ही जानता आ रहा है, मैं तो अभी कौन से ज्ञान को जान रहा है, तो हमें वो समझाने के लिए ये का नाम लिया, अरे ये अग्नि संबंधी ज्ञान को जान रहा है, तो हम कह देते इसने अग्नि को जाना, इसने मिठाई को जाना, जो कुछ है वो पर पदार्थ का नाम लेके बताते हैं ना, तो इसलिए परंतु हम क्या मानते हैं, अरे वो वहां से ही ज्ञान आ गया, ऐसा नहीं है, उसने अपने ज्ञान पर्याय को जाना है, वो ज्ञान पर्याय किसको जान रही थी, तो पर, फिर हमने पर का नाम, यानी इसको कहते ज्ञान अपने ज्ञानाकारों को ही जानता है, और उन्हीं ज्ञानाकारों को गेयाकार कहने में आता है, गेय की अपेक्षा से, यानी ज्ञान सचमुच में अपने ज्ञानाकारों को ही जानता है, फिर भी समझाने के लिए वो ज्ञानाकार कैसे थे, तो गेय जैसे थे, तो हमको गेय का नाम लेना पड़ेगा, तो इसलिए हम वो कहते कि गेयाकारों को जाना उसने। गेयाकार और ज्ञानाकार दो अलग बातें नहीं है, जो ज्ञानाकार है उसी को गेय की तरफ से अगर हम नाम देंगे तो वो गेयाकार हो जाएगा। मिलिंद भाई को बहुत कंफ्यूजन है। हाँ?
देखो अभी हम पहली लाइन पढ़ते हैं ना,
ये क्रमबद्ध पर है कि कैसेट आपने लिए है ना, अंत की छह कैसेटे सुनना, ये बहुत उसमें सुपर प्रकाशक और ये बारे में बहुत ज्ञानाकार गेयाकार बहुत चर्चा की उसमें।
यहाँ जो पहले लाइन में लिखा है ना, खरे खर तो ए ज्ञेय संबंधी पोतानी जे ज्ञानी पर्याय एने ए जाने छे, कौन जानवा वाली पर्याय पोतानी जाने छे, यानी वो ज्ञेय संबंध ज्ञेय को नहीं जान रही है, वो जो ज्ञान की पर्याय में गेय झलक रहा है उस ज्ञान को जान रही, तो वो पर्याय कैसी है, तो नीचे आ गया क्या, ते जो तो पर्याय संबंधी जे ज्ञान छे, यानी पर्याय जिसको जान रही, यहाँ राग लिया तो राग संबंधी ज्ञान, वो जो पर्याय है उसमें राग संबंधी का जो ज्ञान है, और जो स्वयं संबंधी ज्ञान है, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ ये भी जान रहे, वो पर्याय जानेगी कि नहीं, पर्याय में जानना होगा ना कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ करके, और वो उस समय ही पर क्या जान रहे, पर यानी वो ज्ञान की पर्याय में जो राग जनाया जा रहा है उस पर्याय को जान, तो वो स्व पर प्रकाशक वहां लगाया। अभी एक एक स्टेप आगे बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने यहां तक ले आए हमें, और ये क्या कह रहे हैं, मूल बात प्रथम समझाए नहीं, यानी ये बेसिक नहीं समझते, प्रथम दशा अने पची चारित्र ने व्रत क्या थी आवे, यानी जो मूल अपने स्वभाव को ही इसने जाना नहीं है, अपना अनुभव ही नहीं किया है, इन अदर लैंग्वेज सम्यक दर्शन ही नहीं प्राप्त हुआ है तो पछी चारित्रा ने व्रत क्या थी आवे, यानी वो कहाँ हो सकते हैं। क्योंकि जिसको स्वरूप में स्थिरता हो जाए, अपने ही आत्मा का रसा स्वादन हो जाए, तो उसको सहज रूप से ऐसे व्रत आदि लेने के शुभ परिणाम आते हैं। और वो भी कब, कि जब अंतरंग में अधिक 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 मतलब स्थिरता हो और बारंबार स्थिरता होते जाए तो उसको तो ऐसे शुभ परिणाम आएंगे, तो उसके व्रत होंगे। तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने देखा है चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जो जीव है उसको तो अव्रती कहा गया है, तो ये व्रत यानी अनुव्रत धारण करने के परिणाम पंचम गुण स्थान में और व्रत धारण करने के परिणाम छठे सातवें में। तो यहां समझा रहे हैं कि अने चारित्र अने व्रत क्या थी आवे, यानी ये बाह्य में सब कुछ करते हैं और मानते हैं कि हम विशिष्ट पद के धारी हैं, तो कहते ये तो बधा मूल एकड़ा विनाना मिंडा शा कामना, यानी यहाँ सम्यक दर्शन नहीं है और बाह्य में सारी बातें हैं, तो उसका मोक्ष मार्ग के लिए कुछ भी उपयोगी वह वस्तु नहीं है, खाली कहने के लिए बातें हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कल। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकर्ण सदा देते हो।